हरे कृष्ण
जय अनिलो प्रेमाघन करुणा
Thank you.
भागवतम स्कंद 3 और अध्याय 5 और अध्याय का नाम है मैत्रेय से विदुर की वार्ता और श्लोक संख्या है 45। तो कृपया मेरे पास उच्चारण करें। तन्मय हृषद्वेत्तिभिरचिभिर तन्मय हृषद्वेत्तिभिरचिभिर परेश अथो न पश्यन्त्युरुगाय नूनम् अथो न पश्यन्त्युरुगाय नूनम् एते पदन्या सविलासलक्ष्या एते पदन्या सविलास लक्ष्या तन्मय हृषद्वृत्ति विराच्चि वीर्ये पराहृतान्तर्मनसा परेश अथो न पश्यन्त्युरुगाय नूनम् एते पदन्या सविलास लक्ष्या एते पदन्या विलास लक्ष्यन्मनसरेश पश्यन्त्युरुगाय नूनम् पदम्यात विलास रक्षा शब्दार्थ इस प्रकार से है, तान भगवान के चरण कमल, वे निश्चय ही क्योंकि असत भौतिकता वाली वृत्ति भी बहिरंग शक्ति से प्रभावित होने वालों के द्वारा, अच्छे भी इंद्रियों द्वारा, ए जो पराहृत दूरी पर खोए हुए अंत मनसः आंतरिक मन को परेश हे परम, अथो इसलिए ना कभी नहीं पश्यन्ते देख सकते हैं दुर्गाय हे महान, नूनम लेकिन ए जो ते तुम्हारे पदन्यास कार्यकलाप विलास दिव्य भोग लक्ष्य देखने वाले। अनुवाद और तात्पर्य हिजवाई इंग्रेश ऐसी भक्ति बनाम तो स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की अनुवाद। हे महान परमेश्वर, वे अपराधी व्यक्ति जिनकी अंतर्दृष्टि बाह्य भौतिकतावादी कार्यकलापों से अत्यधिक प्रभावित हो चुकी होती है, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर सकते, किंतु आपके शुद्ध भक्त दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य आपके कार्यकलापों का दिव्य भाव से आस्वादन करना है। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता 18वें अध्याय और 61 नंबर श्लोक में कहा गया है, भगवान हर एक के हृदय में स्थित है। यह स्वाभाविक है कि मनुष्य कम से कम अपने भीतर भगवान का दर्शन कर सके, किंतु जिन लोगों की अंतर्दृष्टि बाह्य कार्यकलापों से आच्छादित हो चुकी होती है, उनके लिए यह संभव नहीं है। शुद्ध आत्मा जिसका लक्षण चेतना है, एक सामान्य व्यक्ति द्वारा भी आसानी से अनुभव की जा सकती है, क्योंकि चेतना सारे शरीर में फैली हुई है। जैसा कि भगवद गीता में संस्तुति की गई है, योग पद्धति मानसिक कार्यकलापों को भीतर से ही केंद्रित करना है और इस तरह अपने अंदर भगवान के चरण कमलों का दर्शन करना है, किंतु ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं जिनको भगवान से कोई वास्ता नहीं रहता, अपितु वे केवल चेतना से ही मतलब रखते हैं, जिसे वे अंतिम साक्षात्कार मान लेते हैं। चेतना का ऐसा साक्षात्कार भगवद गीता द्वारा चुटकी बजाते सिखाया जा सकता है, जबकि तथाकथित योगियों को भगवान के चरण कमलों पर अपने अपराध के कारण इसे पाने में वर्षों लग जाते हैं। सबसे बड़ा अपराध तो व्यष्टि आत्माओं से भगवान के पृथक अस्तित्व को नकारना है, या भगवान तथा व्यष्टि आत्मा को एक तथा अभिन्न मानना है। निर्विशेषवादी प्रतिबिंब के सिद्धांत की गलत व्याख्या करते हैं और त्रितीय वश वे व्यष्टि चेतना को परम चेतना मान लेते हैं, परम के प्रतिबिंबवाद को कोई भी निष्ठावान सामान्य जन बिना किसी कठिनाई के अस्पष्ट समझ सकता है। जब जल में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है तो जल के भीतर आकाश तथा तारे दोनों दिखते हैं, किंतु आकाश तथा तारों को समान स्तर पर नहीं माना जाता। तारे तो आकाश के अंश है, अतः उन्हें पूर्ण के समान नहीं माना जा सकता। आकाश पूर्ण है और तारे अंश है, वे एक ही हो ही नहीं सकते। जो आध्यात्म आदि योगी परम चेतना को व्यष्टि चेतना से पृथक नहीं मानते, वे उतने ही अपराधी हैं जितने कि भगवान के अस्तित्व तक को नकारने वाले भौतिकतावादी। वस्तुतः ऐसे अपराधी जन न तो अपने अंतःकरण में भगवान के चरण कमलों को देख सकते हैं और न ही वे भगवत भक्तों को देख सकते हैं। भगवत भक्त इतने दयालु होते हैं कि वे लोगों को इस चेतना से आलोकित करने के लिए सभी स्थानों में ढूंढते रहते हैं, किंतु अपराधी जन भगवत भक्तों का स्वागत करने का अवसर खो बैठते हैं। यद्यपि अपराध रहित सामान्य जन भक्तों की उपस्थिति से तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। इस संदर्भ में एक शिकारी तथा देवर्षि नारद की एक रोचक कहानी है। एक जंगल में एक शिकारी रहता था जो यद्यपि महान पापी था, किंतु वह जानबूझकर अपराध नहीं किया करता था। वह नारद की उपस्थिति से तत्काल प्रभावित हुआ और अपना घर बार छोड़कर भक्ति मार्ग स्वीकार करने को राजी हो गया, किंतु नलकुवर तथा मणिग्रीव अपराधियों को देवताओं के बीच में रहते हुए भी अगले जन्म में वृक्ष बनने का दंड भोगना पड़ा। यद्यपि एक भक्त की कृपा से बाद में भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। अपराधियों को तो तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक उन्हें भक्तों की कृपा प्राप्त न हो ले, तब वे अपने अंतःकरण में भगवान के चरण कमलों का दर्शन करने के पात्र बन जाते हैं, किंतु अपने अपराधों तथा अपनी नितांत भौतिकता भौतिकवादी कथा के कारण वे भगवत भक्तों तक का दर्शन नहीं कर पाते। बाह्य कार्यों में व्यस्त रहने से वे अपनी अंतर्दृष्टि का हनन कर डालते हैं, किंतु फिर भी भगवत भक्त उन मूर्खों के अपराधों पर ध्यान नहीं देते जो अनेक स्थूल तथा सूक्ष्म शारीरिक प्रयासों में लगे रहने के कारण होते रहते हैं। भगवत भक्त ऐसे समस्त अपराधियों को बिना हिचक के भक्ति का आशीर्वाद देते रहते हैं। भक्तों का यही स्वभाव है। ओम ज्ञान विमृंदस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलयितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदाधिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी तारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदे देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तदाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधूं वर्गेन वाकल्पितां श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं प्रेमापुमार्थो महां श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परं श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत सत्र में। तो श्रीमद् भागवतम का ये तृतीय स्कंद का पांचवा अध्याय पर चल रहा है, जिसमें हम आज 45वें नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा शुरू हुई है। हालांकि इस श्लोक के ऊपर मैं ज़्यादा तैयारी कर नहीं पाया हूँ, क्योंकि प्रभु ने शाम को ही रात को ही बताया मुझे। फिर भी आज कुछ आचार्यों का प्रभाव आविर्भाव दिखे तो उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर तात्पर्य है इस श्लोक के ऊपर, काफ़ी लंबा तात्पर्य, एक्चुअली प्रवचन प्रभुपाद जी का ही हो गया है। तो सुंदर तात्पर्य है, हम जानते हैं कि किस प्रकार से ये जो प्रसंग चल रहा है, देवता लोग भगवान की स्तुति प्रारंभ किए हुए हैं। देवताओं का स्तुति भगवान के चरण कमलों में स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए, क्योंकि इन देवताओं की जब सृष्टि हुई तो इनको आगे क्या करना है इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उस समय वो भगवान से, भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना करना प्रारंभ किए हैं। कुछ श्लोकों से हम उन प्रार्थनाओं को सुनते आ रहे हैं, उन स्तुतियों को। तभी आज के श्लोक में विशेषतः देवतागण यह बता रहे हैं कि जो भगवान के चरण कमल हैं ये किनको प्राप्त होते हैं और किनको नहीं प्राप्त होते हैं। ये दो चीज का वर्णन आज के श्लोक में हुआ है, और जिसके ऊपर प्रभुपाद जी ने इन दोनों चीजों को ऊपर लेकर तात्पर्य बहुत लंबा प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है। जब कभी भी प्रभुपाद तात्पर्य लंबा देते हैं तो मतलब समझ जाना कि ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों बातों को कि कौन भगवान के चरण कमल को प्राप्त कर सकते हैं और कौन व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, ये दोनों चीजें यहाँ पे आज के श्लोक में ये देवता लोग बताते हैं भगवान के चरण कमल का चरणों में स्तुति करते हुए। तो कहते हैं आज के श्लोक में कि जो अपराधी व्यक्ति होता है, जो अपराधी होता है जिसकी अंतःदृष्टि है ना, एक होता है बाह्य दृष्टि, हम जो देख रहे हैं ना ये बाह्य दृष्टि है, लेकिन एक होता है अंतःदृष्टि। वो जिनके अंतःदृष्टि, अंतःदृष्टि भी अंधा हो चुका है, वो ये भौतिकता के कारण वो उसकी दृष्टि जो अंतःदृष्टि है वो अंधा, वो बंद हो चुका है, ऐसे लोग भगवान के चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते हैं। इस बात को कि जैसे कि हमने पिछले श्लोक में बात को सुना कि जब तक मैं और मेरा की भावना, जब तक मैं और मेरा की भावना नहीं निकलता है व्यक्ति का, तब तक भगवान के चरण कमलों का वो दर्शन कर ही नहीं सकता है। ये हमने पिछले श्लोक में सुना है। जैसे कि देखिए धृतराष्ट्र जो था वो जन्मजात अंधे थे, है ना, अंधा था। लेकिन धृतराष्ट्र के बारे में यह बताया गया है कि धृतराष्ट्र अंतः चेतना से भी वो अंधा हो चुका था, है ना, जबकि उसको मालूम था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण संधि दूत बनकर आए कि युद्ध ना हो करके संधि को लेकर आए, फिर भी उसने स्वीकार नहीं किया। और वो जानता था कि भगवान है, लेकिन वो अंतर दृष्टिकोण से भी अंधा हो चुका था। क्यों? क्योंकि ये जो मैं की भावना थी ना उनकी बहुत तीव्र थी। ये जो धृतराष्ट्र राष्ट्र को पकड़ के, और मैं सबसे पहले एक्चुअली मैं होता है बाद में मेरा होता है, ऐसा हम नहीं कर सकते कि हमारे जो लोग हैं मेरे हैं या मेरे पुत्र हैं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मैं उससे ज्यादा प्रेम करता हूँ, नहीं। सबसे पहला व्यक्ति पहले अपने से प्रेम करता है, पहला है, बाद में वो अपने स्वजनों से, अपने लोगों से प्रेम करता है। मैं एक जगह पे ये बात मैं कमल उद्धव के मुख से सुना, कोई आचार्य को टीका बताते हुए एक्सप्लेन कर रहे थे कि धृतराष्ट्र के अंदर कुछ लोग बोलते हैं ना कि धृतराष्ट्र पुत्र मोह के कारण ये पूरा महाभारत युद्ध हुआ, ये सेकेंडरी है। प्रायोरिटी ये है कि धृतराष्ट्र के जो मैं की भावना इतना तीव्र था कि उसके कारण पूरा महाभारत का युद्ध हुआ। धृतराष्ट्र का सोच कैसा था कि भले से वो जानता था इस बात को, संजय ने इंगित कर चुका था, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनरधना सत्र शिवजो ज्योतिर दिवानि तिरुमला, ये सब उसको नॉलेज था कि जहाँ पे कृष्ण है वहां पे विजय होने ही वाली है। रोक सकता था युद्ध को, लेकिन फिर भी नहीं रोका। क्यों? क्योंकि उसकी मैं की जो भावना थी ना वो इतना प्रगाढ़ था। क्या थी मैं की भावना? कि भले से मेरे पुत्र भी मारे जाए, हमसे यही सुनते हैं ना कि दुर्योधन जो उसके पुत्र मोह के कारण युद्ध हुआ, नहीं, मेरे पुत्र भी मारे जाए, भले से जितना दिन तक युद्ध चलेगा उतना दिन मैं अपनी गद्दी पे बैठूंगा,
ये था उसकी मैं की भावना। किसी आचार्य को टीका रोज एक्सप्लेन करते हुए कह रहे थे कि जितना भले से मारे जाए, सब मारे जाए, मुझे तो क्या लेना देना, जितना दिन युद्ध चलेगा उतना दिन तो मैं सीट पे बैठूंगा। तो ये इसको बोलते अंतर दृष्टिकोण से अंधा। और देवता लोग यही बात को बता रहे हैं कि व्यक्ति जब उसका अंतर दृष्टि से भी अंधा हो जाता है ना, तो उसका सर्वनाश हो जाता है और वो कभी भी भगवान के चरण कमलों को नहीं प्राप्त कर सकता। दुर्योधन धर्म क्या है जानता था, ऐसा नहीं कि नहीं जानता था। रावण भी धर्म के विषय में जानता था। दुर्योधन इस बात को स्वयं कहता है, जानाति धर्म अधर्मेन प्रविष्ट। मैं धर्म को जानता हूं कि क्या धर्म है, लेकिन फिर भी मैं अधर्म में प्रविष्ट हो रहा हूं। इस बात को जानता था दुर्योधन धर्म क्या है, लेकिन फिर भी अधर्म को पकड़ के बैठा हुआ था। तो वो कभी भी ऐसे जो देखिए दुर्योधन के सामने भगवान प्रकट भी हुए है, लेकिन फिर भी वो भगवान को भगवान नहीं माना, ये अपराध है। तो ये बहुत सारे भौतिकतावाद, ये प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भौतिक विषयों के प्रति आसक्ति, भौतिकतावादी में लिप्त व्यक्ति वो अंतर दृष्टिकोण से अंधा हो जाता है और ऐसे व्यक्ति भगवान के चरण कमल को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, या तो उनके चरण कमलों का दर्शन कभी भी नहीं कर सकते। हालांकि ऐसे अपराधी भक्तों की उपस्थिति, प्रभुपाद जी इस बात को लिखते हैं तात्पर्य में कि भक्तों की उपस्थिति होने के बाद भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि वो भक्त लोग बहुत कुछ बताते हैं, उनको उपदेश देते हैं, फिर भी नहीं। इसी दुर्योधन और धृतराष्ट्र के प्रसंग में देख लीजिए, विदुर जी वहां पे महान भक्त थे, विदुर जी भगवान के शुद्ध भक्त, बार बार इंगित करते थे, बताते थे कि मत कराओ, युद्ध नहीं होना चाहिए, नहीं चाह रहे थे युद्ध, समझा रहे थे, लेकिन दोनों के दोनों नहीं समझे। तो प्रभुपाद जी इस बात को लिखते हैं कि भक्त की उपस्थिति भी इन अपराधियों को प्रभावित नहीं कर पाती है। लेकिन प्रभुपाद जी बात को लिखते हैं कि लेकिन जो अपराध रहित, मतलब जो अपराध मुक्त है, ऐसा व्यक्ति जो संसार के लोग है, भले से वो पाप कर्म करते हो, कितना भी बड़ा पापी हो, भले से वो पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, लेकिन ऐसे अपराध रहित जो अपराध नहीं करते हो, उनको मालूम नहीं है उन पाप कार्य को कर रहे हैं। प्रभुपाद जी इस बात को लिखते हैं कि जो ये अपराध रहित जो लोग होते हैं, पापी लोग होते हैं, ऐसे लोगों को अगर भक्त उनके पास गए ना, उनकी उपस्थिति उनको प्रभावित कर देती है। भक्तों की उपस्थिति ऐसे अपराध रहित, भले से वो पाप कर्म में लिप्त है, लेकिन उनको प्रभावित कर देती है। और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण एक देते हैं, क्या उदाहरण देते हैं, मृगारी का उदाहरण देते हैं, शिकारी का देते हैं, क्यों शिकार कर लिप्त था, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए शिकार किया करता था। लेकिन जब नारद मुनि की वहां पर उपस्थिति हुई और नारद मुनि ने उनको सही ज्ञान दिया कि तुम किसके लिए कर रहे हो, पूछो तुम्हारे पाप के भागीदारी बनेंगे क्या, पूछ के जब आया तो पता चला कोई पाप के भागीदारी नहीं बनने वाले हैं, और तुरंत ही नारद मुनि की कृपा से वो शिकारी भक्त बन गया। तो ऐसे पापी लोग प्रभावित हो जाते हैं भक्तों से, लेकिन अपराधी लोग उनकी उपस्थिति से भी प्रभावित नहीं होते हैं। तभी एक प्रश्न उठता है, प्रश्न ये है कि क्या ऐसे अपराधियों का कभी कल्याण होगा ही नहीं। तो इस बात को भी प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि ऐसे अपराधियों जनों का कैसे उद्धार होगा, है ना, क्योंकि वो अल्टीमेटली वो भी तो जीव है, उनको भी उनका भी उद्धार होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी इस बात को लिखते हैं, अगर एक प्रश्न उठाए हैं कि क्या इस ऐसे अपराधियों का कभी भी कल्याण नहीं होगा, कभी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उसको इंतजार करना होगा जब तक उनको उन भक्तों की कृपा नहीं प्राप्त हो जाती। जैसे वो उदाहरण देते हैं नलकुबेर और मरगिरी का, हालांकि वो अपराध किए और उसको उनको दंड भी मिला, लेकिन नारद मुनि की कृपा से वो दंड भी उनके लिए, फिर भगवान ने क्या किया, उनका उद्धार किया। इस बात को प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो अंत में प्रभुपाद जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात को लिखते हैं कि भक्तगण जो इतने कृपालु होते हैं, इतना दयावान होते हैं कि ऐसे अपराधी, भले से वो अपराधी उनके प्रति भी अपराध करता हो, उनको नेगलेक्ट करता हो, दुरुपयोग तिरस्कृत करता हो, लेकिन फिर भी ये जो भक्त है वो कभी भी उससे विचलित नहीं होते हैं और हमेशा उसको आशीर्वाद देते रहते हैं भक्ति का, और प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रभु इसके मति को सुधारिए, इसको मति को सुधारिए। वो भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि इनको भक्ति मिले, भक्ति प्रदान हो, या फिर आपके प्रिय बने, इस प्रकार की प्रार्थना करते रहते हैं जो एक भक्त होते हैं। तो वास्तविक जो भक्त होते हैं उनका ये स्वभाव है। प्रभुपाद जी अंतिम में लिखते हैं कि भगवत भक्त ऐसे समस्त पराजयों को बिना हिचक के भक्ति का आशीर्वाद देते रहते हैं। कोई हिचकिचाहट नहीं करते, भले से वो कितना भी अपराध करता रहे उनको बिना हिचक के वो आशीर्वाद देते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भक्तों का स्वभाव है। जैसे कि हम एक उदाहरण देखते हैं ना कि वो जो बिच्छू नदी की धारा में बह रहा था, तो साधु ने क्या किया, बिच्छू बह रहा है तो उसको बिच्छू को अरे बह जाएगा मर जाएगा करके उसको बचाया, और बिच्छू ने क्या किया, बिच्छू का स्वभाव क्या है, डंक मारना, डंक मारा नीचे गिर गया, फिर से बहने लगा, फिर से उठाया। ते बार बार प्रक्रिया को देखकर किसी ने पूछा, अरे क्यों उसका स्वभाव है डंक मारना, उसको क्यों उठा रहे हो? तो साधु ने यही किया, कहा कि जब उसका स्वभाव डंक मारना है तो मेरा तो स्वभाव है लोगों के ऊपर करुणा करना, उसको बचाना, मैं अपने स्वभाव को क्यों उतार दूं। तो ये भक्त होता है, अपने स्वभाव को कभी भी नहीं छोड़ता। इसी बात को प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि भक्तों का स्वभाव है, कोई कितना भी उनके प्रति अपराध करे फिर भी वो उसको तिरस्कृत नहीं करते हैं, उसको आशीर्वाद और भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। तो इस बात को यहाँ पे आज भगवान के चरण तो हम लोग को कौन नहीं प्राप्त कर सकता है और कौन प्राप्त कर सकता है, ये हो गया कौन नहीं प्राप्त कर सकता। अपराधी जो जन है कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको ये चरण कमल प्राप्त होते हैं। जो भगवान के अनन्य चिंतयन्तो मां ए जना परिवासते, भगवान को जो अनन्य भाव से भक्ति करते हैं, ऐसे लोगों के सामने भगवान का ये जो चरण कमल है ये दर्शन होता है, इन चरणों का, चरण कमलों का, जैसे शुद्ध भक्तों का। तो अपराधियों को नहीं प्राप्त होता है और जो उनका अनन्य भाव से भक्ति करते हैं उनको प्राप्त होता है, ये दूसरी बात को इस श्लोक में देवतागण आज बता रहे हैं। तो क्यों देखिए प्रभुपाद जी भी इसका प्रारंभ, तात्पर्य का प्रारंभ इसी से करते हैं, भगवद गीता के 18वें नंबर के 61 नंबर श्लोक से करते, 18वें अध्याय के 61 नंबर श्लोक, जहाँ पे ईश्वर सर्वभूतानां सर्व हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि भगवान जो है ईश्वर जो है सभी जीवों के सभी भूतों के सभी जीव के हृदय में निवास करते हैं। और ये जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवान की उपस्थिति हर एक जगह पे देखता है, चाहे वो चर हो चाहे अचर चीज हो, हर एक उसकी दृष्टि ऐसी होती है। पंडिता समदर्शिना, भगवदगीता में बताया गया कि पंडिता समदर्शिना, वो सबको संभाव से और सबके अंदर भगवान का दर्शन करते हैं, चाहे वो चर हो चाहे अचर चीज हो। तो एक शुद्ध भक्त को भगवान के चरण कमल का दर्शन होता है, ये आज का श्लोक है। वो हर एक के हृदय में दर्शन करते हैं, जैसे कि अभी ऐसे ही शुद्ध भक्त जिनको भगवान का दर्शन वो हर जगह पे करते हैं, ऐसे शुद्ध भक्त, ऐसे ही एक शुद्ध भक्त जिनका श्री बंसीदास भाव जी महाराज जिनका आशीर्वाद तिथि है, तो हम उनके ही जीवनी से समझते हैं कि किस प्रकार से भगवान का दर्शन ये करते हैं। तो बंसीदास भाव जी महाराज जिनका आज तिरुभाव तिथि है, बहुत महान भक्त है भगवान के बंसीदास भाव जी महाराज। बंसीदास भाव जी महाराज एक बार उन्होंने एक ट्रेन को जाते हुए देखा, एक ट्रेन जा रही थी, एक ट्रेन को जाते हुए देखा, और जो ट्रेन का जो पहिया है ना वो चक्का को बहुत तेजी से घूमते हुए देखा। बंसीदास भाव जी महाराज ने वो ट्रेन को देख रहे थे और उसके चक्के को देख रहे थे, और उस चक्के को देखकर तुरंत ही वो चिल्लाने लगे, रासमंडल 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 इस प्रकार से चिल्लाने लगे, और चिल्लाते 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 वो भाव विभोर होकर गिर पड़े। अभी विचार करें उसमें क्या दर्शन कर लिया उन्होंने, रासमंडल का उच्चारण करने लगे, मतलब उनको भगवान की जो रास लीला है ना, जो उस रात्रि में भगवान ने सारे गोपियों के साथ हर एक गोपियों के साथ एक एक कृष्ण का रूप लेके और चक्र की बात वो रास मंडल और लीला को चक्र की बात करें, तो वो पहियों के चक्र को देखकर बंसीदास बाबूजी महाराज क्या रास मंडल, भगवान की रास लीला याद आया। सोचिए हम स्टेशन पर खड़े होकर चक्र को देखे तो सोचते हैं कि अगर चक्कर निकल गया तो क्या होगा। लेकिन ये एक भक्त होते हैं, देखिए उन्होंने उसको देखकर क्या भगवान की रास लीला का स्मरण किया, उस पहिये के चक्कर को देखकर बंसीदास महाराज। और इसी बात को यहाँ पे देवता आज कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान को हर जगह पे, उनको चरण कमल हर जगह पे दिखता है भगवान का। तो बंसीदास महाराज ये भक्ति श्री भक्ति सिद्धार्थ महाराज सरस्वती के ठाकुर के समय थे, और भक्ति सिद्धार्थ महाराज से बहुत प्रेम करते थे, बहुत बहुत प्रेम का आदान प्रदान होता रहता था, और क्योंकि ये अकिंचन थे और अवधूत थे, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या करते थे कि इनको डेली अपने कुछ भक्तों को भेजकर इनको प्रसाद भेजा करते थे खाने के लिए, और कभी कभी जब दर्शन के लिए आते थे तो उस समय बंसीदास बाबाजी महाराज कहते थे कि जगन्नाथेर विमला, बंसीदास बाबाजी महाराज भक्ति सिद्धांत महाराज उसको कहते थे कि जगन्नाथेर विमला आ रहा है, देखो मतलब जो विमला देवी की कृपा से, उनका विमला प्रसाद नाम था ना, विमला देवी की कृपा से उनको पुत्र प्राप्त हुआ था श्री भक्ति विनोद ठाकुर को, भक्ति सिद्धांत महाराज प्राप्त हुए थे। तो इसका स्मरण करते हुए बंसीदास बाबूजी महाराज क्या कहते थे, जगन्नाथ है विमला देखो आ रहा, आ जाओ आ जाओ, अरे देखो देखो मंजरी आ गई मंजरी आ गई मंजरी आ गई, आ जाओ आ जाओ। हाँ राधा रानी भी आ रही कि नहीं, क्या नहीं आएगी राधा रानी, इस प्रकार की बातें करते थे। मंजरी आ गई, नहीं 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 मंजरी आ गई, अभी राधा रानी भी आ जाएगी। हाँ इस प्रकार से वो भक्ति सिद्धांत महाराज के साथ ये आदान प्रदान होता रहता था। और ये विशेष करके बंसीदास बाबा महाराज का जो जीवनी है ना, और इनका ही नहीं हमारे जितने भी गौड़ीय आचार्य गौड़ीय वैष्णव जितने भी गोस्वामी हैं उनका जीवनी हम पढ़ेंगे ना, देखिए एक विशेषता है। देखिए बंसीदास बाबा जी महाराज को मुसलमान लोग भी प्रेम करते थे, मुसलमान लोग भी बहुत प्रेम करते, हर एक व्यक्ति प्रेम करता था। हम सर्व गोस्वामी अष्टकम में पढ़ते हैं, धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो निर्मत सरोवराम सुखम। कि जो धीर धीर मतलब कौन, जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है ना, जो आत्म साक्षात्कार विज्ञान को प्राप्त कर चुका है वो व्यक्ति कौन है, धीर है। और अधीर कौन है, जिसने प्राप्त नहीं किया है, या जो भौतिकतावादी में डूबे हुए लोग हैं वो उसको अधीर बोलते हैं। लेकिन ये दोनों व्यक्ति चाहे धीर हो या अधीर, ये धीरा धीर जनप्रिय ये दोनों लोग इन गोस्वामियों को प्रेम करते थे। केवल भक्त ही प्रेम नहीं करते थे, जो अधीर व्यक्ति वो भी इनसे प्रेम करते थे, अधीर व्यक्ति भी प्रेम कर क्या करते थे। इसलिए धीरा धीर जना धीर और अधीर सबको प्रिय थे लोग गोस्वामी लोग। तो ये विशेष करके ये जो बंसीदास बाबा जी महाराज, इनको मुसलमान लोग भी प्रेम करते थे, सब लोग बहुत प्रेम करते थे बाबा जी को। और विशेष करके बंसीदास बाबा जी महाराज का जो वो जिन गौर निताई के विग्रह को रखते थे अपने पास, उनके उनके जो अर्चा विग्रह थे वो कौन थे, गौर निताई थे। तो गौर निताई के विग्रह और गौर निताई से बहुत प्रेम करते थे, और गौर निताई के साथ बात किया करते थे, हमेशा बात करते थे वो अपने फैमिली मेंबर की तरह से, जैसे हम बात करते ना दूसरे से, इस प्रकार से बात करते थे वो। कभी कभी वो गंगा स्नान के लिए जाते थे तो इन विग्रहों को लेकर जाते थे, और उन विग्रहों को भी गंगा में डुबा डुबा के स्नान करते थे, और खुद भी करते थे उनको भी स्नान कराया करते थे। और हमेशा प्रेम का जो आदान प्रदान ना इन विग्रहों के साथ हुआ करता था, और इतना प्रेम था इन विग्रहों का। आप उन पास्ट टाइम को अगर पढ़ते हो ना तो बहुत बहुत आनंद अनुभव आनंद का अनुभव अनुभूति होता है अपने को। क्या प्रेम था, क्या वार्तालाप था इन विग्रहों के साथ बंसीदास बाबा जी महाराज का। एक बार की घटना है कि बंसीदास बाबा जी महाराज कुछ विचाटन वगैरह करते थे, वो लाके इन विग्रहों को खिलाते पिलाते थे। एक दिन की घटना है कि आए कुछ भोग इत्यादि इकट्ठा करके आए, और उन्होंने आकर जब उन्होंने देखा कि ये जो उनका दोनों पात्र है गौर निताई के, जो दोनों कटोरी जो दोनों पात्र है वो गायब हो चुके हैं, तो गायब हो गए। और उन्होंने देखा कि है नहीं इधर, और भोग किस में लगाए, तो उन्होंने भोग को साइड में रखा और जाके बोला अगर खाना है ना तो कटोरा लेके आओ, कोई चोरी कर लिया था। सीधा बोले कि खाना आएगा तो कटोरा लेके आओ, और मैं चला गया एक अपने कटोरे का भी रक्षा नहीं कर सकते हा? जब तक कटोरा नहीं लाओगे तब तक मैं तुमको भोजन नहीं दूंगा। और ये सब सुनकर नित्यानंद वो तो तुरंत जाके भाग के जाके किसी से मांग के लाया कटोरा, अभी कौन चुरा के लगेगा पता नहीं, लेकिन किसी से मांग के लेकर आए और लेके बोले कि दीजिए मुझे हाँ, और वो तुरंत उनको देते हैं। और ये चतुर महाप्रभु बोलते तू क्या देख रहा है, तुम भी लेके आएगा तब दूंगा, तुम भी जा, तुम लेके जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं दूंगा। और फिर चतुर महाप्रभु भी जाते हैं और अपने कटोरा को लेकर आते हैं, तब जाकर उनको रोक खिलाते हैं। इस प्रकार का आदान प्रदान सोचिए कि कैसा आदान प्रदान इन विग्रहों के साथ वो बात किया करते थे। एक बार तो ऐसा ही कुछ आश्रम से कुछ चीजें गुम हो गया, कुछ चीजें गुम हो गया, और आए देखे तो मिला नहीं, और मिला नहीं तो गुस्सा आया उनको, और डंडा उठाया बोले कि सामान की रक्षा नहीं कर सकते यहाँ पर आके, और डंडा उठाकर जैसे ही दौड़े दोनों विग्रह भागने लगे वहां से। भागते 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 वर्णन है कि बंसीदास बाबा जी महाराज के एक शिष्य चैतन्य दास उन विग्रह जो उनके हृदय में चले जाते हैं, तब से उनका हृदय चैतन्य दास नाम पड़ जाता है, उनके हृदय में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से इन विग्रहों के साथ जो है ना बंसीदास बाबा जी महाराज का बहुत आदान प्रदान सुंदर तरीके से होता था। और बहुत एक भक्त जो होता है, जो अनन्य भाव से भक्ति करता है, शुद्ध भक्त जो होता है ना, निश्चित रूप से वो भगवान के साथ वार्तालाप करता है, उनके साथ आदान प्रदान होता है। तो ये देखिए बंसीदास भावजी महाराज से सब लोग बहुत प्रेम किया करते थे और प्रेम वश क्या कुछ ना कुछ भेंट लाके दिया करते थे उनको, बंसीदास भावजी महाराज को कुछ ना कुछ भेंट लाके दिया करते थे। एक दिन की घटना है कि उनको भेंट में बहुत सारे केले आ गए, केले प्राप्त हुए, तो उन्होंने क्या किया, आश्रम में कुटिया में ना बहुत सारे चूहे थे और वो कभी मारते और भगाने का काम नहीं किया करते थे, तो बहुत चूहे रहते थे, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ही कुटिया था बाम्बू का बांस का बना हुआ, तो उन्होंने केलों को क्या किया, रस्सी में बांध बांध के लटका दिया कि चूहे खा जाएंगे इसलिए उन्होंने बांध बांध के लटका दिया कि वहाँ चूहे नहीं पहुँचेंगे। लेकिन क्या हुआ कि वो चूहे भी बहुत चाणक थे और क्या किए, बिल को खोदना चालू किया, मिट्टी को खोदना चालू किया और खोदते 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 मिट्टी का इतना बड़ा ढेर बना दिए कि उस मिट्टी के ढेर पर चढ़कर उस केले को खाने लगे। जब उस केले को खा रहे थे तो एक जो बंसीदास भावजी महाराज के साथ में एक उनका सेवक था तो उसको बहुत गुस्सा आया, इतना जतन से रखा हुआ है ये लोग, इतना चलाकी कर रहे हैं कि ऐसा खोद खोद के मिट्टी इकट्ठा करके उसके ऊपर चढ़ के खा रहे हैं, बहुत गुस्सा आया उसको और उस गुस्से वाला सोचा था कि लोग कोई मारता हूँ। और इस प्रकार की जब भावना उसकी हुई कि मारने के, उसी समय बंसीदास भावजी महाराज ने रोक लिया, रुको रुको रुको, अभी बेचारे इनको क्यों मार रहे हो, ऑलरेडी इधर चोर का घर है, चोर इधर बैठा हुआ है, एक और आके चोरी कर रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, चोरों के घर में चोर आया, क्यों मार रहे हो उसको, जाने दो, हमने तो उसको भोग लगाने के लिए सजा के रखा हुआ था, लेकिन उसका नहीं इच्छा नहीं खाना है इसलिए कहा खाने दो, चोर के घर में चोर आया था क्यों मार रहे हो, जाने दो, ऐसा करके उसको समझा के हटा देते। तो इस प्रकार से देखिए मैं एक बात को बताना चाह रहा हूँ कि विग्रहों के साथ आदान प्रदान देखिए उनका, बहुत बहुत प्रेम किया करते थे। एक दिन गौर पूर्णिमा का दिन था, गौर पूर्णिमा होली का दिन था और लोग इतना प्रेम किया करते थे बंसीदास भावजी महाराज से कि उस प्रेम वश देखते ना होली के दिन लोग होली करते हैं, पहले तो होली खूब खेलते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, दोपहर के बाद नहा धो के एक दूसरे को क्या लगाते हैं, टीका लगाते हैं, गुलाल इत्यादि जो छिड़कते हैं एक दूसरे से नहा धो के फ्रेश होके। तो गौर पूर्णिमा का समय था, बंसीदास भावजी महाराज उपवास किए हुए थे, उपवास की वजह से उस दिन जप कर रहे थे, शाम को फेस्टिवल है, गौरनिताई का अभिषेक शाम को करना है इत्यादि जो भी है, और बैठ के वो जप कर रहे थे। लेकिन लोग उस दिन होली का त्यौहार भी था, लोग इतना प्रेम करते थे उनसे कि उस प्रेम वश उन्होंने क्या किया, होली तो खेलने नहीं आए लेकिन होली के बाद का जो ये टीका लगाना और सम्मान देना, एक दूसरे से प्रेम करना ना, वो सब करने के लिए वहाँ के लोग वहाँ पे धीरे धीरे बंसीदास भावजी महाराज के पास भी आने लगे और आकर क्या करते थे, वो टीका भी लगाते थे और वो गुलाल छिड़कते जाते थे, बंसीदास भावजी महाराज जप कर रहे हैं और इतना लोग आए उनके दर्शन के लिए, इतना प्रेम करते थे लोग कि ये थोड़ा थोड़ा डालते 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 जाते वो गुलाल से ना इतना तक वो भर गए, ढक गए उस गुलाल से गर्दन तक, बंसीदास महाराज ढक गए पूरा, सोचिए कितने लोग उनके दर्शन के लिए आए और कितने लोग, मतलब कितना प्रेम करते थे लोग उनसे। लेकिन साथ साथ में बहुत सारे भेंट भी लेके आते थे और बंसीदास महाराज के बाजू में भेंट को रखते थे, भेंट मतलब बहुत सारे सामग्री भी और साथ साथ में बहुत सारे धन भी। तो बंसीदास भावजी महाराज देख रहे थे बहुत सारे धन आ रहे हैं, तो प्लान भी बना रहे थे कि शाम को कैसा फेस्टिवल करना है, हैं क्योंकि जितना धन उतना बड़ा फेस्टिवल, क्योंकि हमारा दिमाग फेस्टिवल के लिए कब चलता है, हैं जब लक्ष्मी आता है तब तो दिमाग चलता है। तो जब करते करते वो यही सोच रहे हैं कि अभी धन इतना सारा धन आ रहा है, इतने लोग ने धन दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, शाम को भव्य फेस्टिवल मनाएंगे, गौर निताय का भव्य अभिषेक करेंगे और इतना छप्पन भोग बनाएंगे कि पूरा सबको प्रचुर मात्रा में बांटेंगे उस प्रसाद को, ऐसा प्लान कर रहे थे, ऐसा प्लान कर रहे थे और सारे इतने धन इकट्ठा हो गए। और संध्या का समय आया और मन में बहुत सारे फेस्टिवल मनाने के पूर्ण रूप से तैयारी हो चुका बंसीदास भावजी महाराज का, हाँ कि अभी संध्या समय आ रहा है और मैं क्या करूँगा, इस धन को लेकर सुंदर फेस्टिवल और भोग इत्यादि को बनाना प्रारंभ करूँगा। लेकिन हुआ क्या कि शाम का समय हुआ, वो जितने धन थे कोई चोर चोरी करके लेके चला गया चोरी करके लेके चला गया। तो अभी क्या हुआ, उनका जो सेवक था उसने सब धन को रखा अंदर और वहाँ से कोई चोरी चुरा ले गया, पूरा धन ही कर दिया। तो अभी सेवक था बड़ा टेंशन में हो गया, हाँ एकदम इतना टेंशन हो गया कि उसके पसीने पसीने आने लगे कि अभी क्या होगा शाम के लिए, पूरा धन ही चोरी हो गया, कैसे करेंगे फेस्टिवल, इतना इतना बेचैन हो गया ना कि भक्तिदास महाराज बाबाजी महाराज ने उसके बेचैनी को देखते हुए कि क्या हो गया इसको, और वो समझ गए शुद्ध भक्त ना किसी को देखता ना उसकी आंखें जो है ना वो एक्सरे के समान होती है, और तुरंत सारा कुछ एक मन में कुछ, इसलिए बोलते हैं ना कभी भी शुद्ध भक्तों के सामने जाके झूठ नहीं बोलने का, क्योंकि वो देख लेते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। कभी कभी एक्सपीरियंस है, हम भी महाराज के पास जाते तो महाराज पहले से बोल देते हैं मुझे मालूम है कैसे मालूम है, पढ़ लेते हैं एक्सरे, उनकी आंखें जो होती है एक्सरे के समान होती है, और उन्हें तुरंत पढ़ लिया कि भयभीत क्यों है, भयभीत इसलिए क्योंकि धन चोरी हो गया, और तुरंत ही बंसीदास बाबाजी महाराज ने उसको बुलाया कि आओ चिंता मत करो, क्या फर्क पड़ता है, हमने हमारे पास इतना आया, हम यही प्लान बना रहे थे कि उनकी सेवा करेंगे, अभी धन चोरी हो गया नहीं करेंगे सेवा, तुम चिंता मत करो, और उसको सांत्वना दिए, देखो ये धन जो है ना ये हाथ का मैल है, वो आता है और जाता है, कभी भी टिकता नहीं है, है ना, धन कभी भी टिकता नहीं है, इसे तुम चिंता मत करो। और उसको एक उदाहरण देते हैं, तुम सेविंग करते हो? हाँ सेविंग करता हूँ, बाल निकाल दिया वापस बाल आता है कि नहीं, बस ऐसा ही, धन चला गया ना वापस धन आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। और उसको निश्चिंत किए कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, और विग्रह को बोले कि आपने चोरी करवाया है ना आज छुट्टी, आज शाम का भैंसों छुट्टी, क्या हमारे पास है ही नहीं कुछ, चोरी करवा दिया सभी। तो कभी विग्रह उनके साथ कुछ करते थे और कभी ये उनके साथ कुछ करते थे, इस प्रकार का आदान प्रदान कुछ न कुछ चलता रहता था। और उन्होंने उसको ये तसल्ली दिया है, ये और कोई नहीं चोर किया है चोरी, ये इसने ही किया हुआ है, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुमको विचलित होने की जरूरत नहीं है। एक बार की घटना है कि एक बीमारी व्यक्ति, हैजा की बीमारी हो गया था उसको, वो व्यक्ति उनके पास आया, एक्चुअली उसने परेशान होकर होप छोड़ दिया था जीवन जीने का, क्योंकि अभी उसको था, क्योंकि उस समय हैजा के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं था उस समय, और पेट पेट का एक बीमारी है, बहुत दर्द करता है जो भी है ऐसा, उस समय कोई ट्रीटमेंट नहीं था, और वो बहुत जगह जा जाके परेशान हो चुका था, लेकिन लास्ट में देखा कि अभी तो मेरा मरना पक्का है, और इस जीवन जीने का भी होप छोड़ दिया था, और उस समय वो बंसीदास बाबाजी महाराज के पास आता है। ऐसा ही होता है, लोग जब ना सब जगह से हार जाते हैं ना तब साधु के शरण में आते हैं, अगर वही अगर बुद्धिमत्ता लगाकर अगर पहले साधु के शरण में आ जाता समझते ही नहीं हो, लेकिन सब जगह से हार जाते तो चलो ठीक है देखते हैं बाबा जी महाराज कुछ कृपा कर देंगे, है ना, प्रभु जी हमारे ऊपर कृपा करिए, हमारे बच्चे का तबीयत ठीक नहीं हो रहा है, ये करिए आप हम जाते हैं तो देखते हैं लोग यही आशीर्वाद मांगते हैं, ये कर दीजिए आप आशीर्वाद दीजिए ठीक हो जाए ऐसा ऐसा है जो भी। लेकिन ये जो व्यक्ति था जिसको ये बीमारी हुआ था, वो आ तो गया बंसीदास बाबाजी महाराज की कुटिया के पास, लेकिन उसने कभी ये उनसे नहीं मांगा कि मुझे ठीक कर दो, वो मांगा ही नहीं, वो कुटिया के सामने चार दिन तक वो गिरे पड़ा रहा बिना खाए पिए, क्या खाएगा भैया, एकदम पड़ा रहा कि अभी तो मरना ही है, इधर मर जाऊं इनके सामने, वो इस भाव से ना तो कुछ बोला, और बंसीदास बाबाजी महाराज ने भी उसको पहले ही दिन देखा और वो भी कुछ नहीं बोले, वो थोड़े ही डॉक्टर है वो भी कुछ नहीं बोले, और इसने भी कुछ नहीं बोला, लेकिन बंसीदास महाराज एक दिन गया, दो दिन गया, तीन दिन गया, चार दिन तक वैसे ही पड़ा है इधर देखे, तो उन्होंने सोचा कि चलो इसको पर कुछ कृपा कर दिया जाए। तो क्या करते हैं बंसीदास बाबाजी महाराज, जाते हैं गौर निताय के चरणों में से तुलसी दल उठाते हैं, और उठा के अभी उस व्यक्ति को ठीक करना है, देखिए उसका उसकी बीमारी को ठीक करना है, मन में विचार बना लिया, हाँ, और तुलसी दल को चरण कमल से उठाया, उठाकर मैं भी सोच रहा था उठाए होंगे तो गौर निताय के बोले होंगे अभी ये दवाई है ले जा रहा हूँ काम करना चाहिए, नहीं काम किया तो मैं ऐसा सोच रहा था मुझे बहुत कि ऐसा बोले होंगे ना क्योंकि तुलसी दल तो हम भी बहुत लोग को देते रहते हैं वो उठाए और उठा के उस व्यक्ति को लेकर दिया और उसको खिलाए, और तुरंत उसके सारे रोग दूर हो गए, तुरंत दूर हो गए, वो तुरंत चंगा हो गया, और तुरंत उनको प्रणाम किया और निकल पड़ा। हो देखिए जैसे तुलसीदास बाबाजी महाराज इस प्रकार से वो विग्रहों के साथ आदान प्रदान, मैं तो बार बार उनके सारे पास टाइम से ही सोचता हूँ कि विग्रहों के साथ कैसा आदान प्रदान था उनका, किस प्रकार से किया करते थे उन विग्रहों के साथ। एक एक सात वर्ष की एक कन्या थी, वो डेली कुटिया में आया करते थे, क्या करते थे बंसीदास बाबाजी महाराज के लिए वो लोटे में गंगा जल लेके आया करती थी, वो कुटिया में आकर वो जब सेवा पूजा करते थे उस समय वो जल ला कर देती थी, उससे वो अभिषेक किया करते थे। तो एक दिन की घटना है, वो रोज आया करते थे और बंसीदास बाबूजी महाराज के साथ सेवा करते थे तो बात करते किया करते थे, विग्रह के साथ बात करके किया करते थे। तो उस समय ही वो कन्या आती थी, 7 साल की वो कन्या थी, वो आके जल को जहाँ सेवा कर रहे वहां पर रख के वो चली जाती थी। तो डेली का ये रूटीन था, लेकिन एक दिन की घटना ऐसी बनी कि जैसे ही उसने उस जल के पात्र को, उस लोटे को, गंगा जल को वो विग्रह के पास रखा सेवा पूजा के लिए, और वो तुरंत जाने लगे, रोज की बात है, वो तुरंत निकलने लगी। और जैसे ही निकले तो उस समय बाबाजी महाराज ने क्या बोला कि कहाँ जा रहे हो तुम, रुको। रोज ऐसा बोलते नहीं थे, आज उन्होंने ऐसा बोला कि कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, जाओ मत, रुक जाओ, ऐसा करके बोले। लेकिन वो लड़की ने ध्यान नहीं दिया, ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो विग्रहों के साथ बात करते थे, रोज कुछ ना कुछ उसके साथ बात करते थे, तो उसको ऐसा लगा उसी के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि लोटा रखा और निकलने लगी घूम के। तो उसने बात सुना, लेकिन उसके लिए बात ऐसा नहीं, वो क्या सोचा विग्रहों को कुछ बोल रहे हैं, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। और जैसे ही वो दरवाजा गेट खोला और बंसीदास बाबूजी महाराज को ये आभास हुआ कि मेरे बोलने के बाद रुकी नहीं है, और जैसे ही आभास हुआ बंसीदास बाबूजी महाराज ने सेवा छोड़ते ऐसा छलांग लगाया और उस बच्ची को तुरंत पकड़ लिया, पकड़ के खींच लिया, क्योंकि नेक्स्ट ही सेकेंड वो उसका जो पैर है ना वो दरवाजे के बाहर, चौखट के बाहर पड़ने वाला था, और नेक्स्ट सेकेंड ही बहुत बड़ा बिजली वहां पे गिरा। अगर वो नहीं पकड़ते खींचते तो उस बिजली से उस बच्चे का मृत्यु हो जाता था। देखिए सेवा कर रहे हैं, कैसी दृष्टिकोण है, देखिए दिव्य दृष्टि कैसी है, तुरंत उस बच्चे को बचा लिया। इस प्रकार से बंसीदास बाबूजी महाराज जो कि इन विग्रहों के साथ बहुत सुंदर आदान प्रदान, ऐसे कई सारे पास्ट टाइम है उनके बारे में मिलता है, और ऐसे ही शुद्ध भक्त जो होते हैं, ऐसे ही अनन्य भक्ति करने वाले जो लोग होते हैं उनके सामने भगवान का ये जो चरण कमल है, भगवान प्रकट होते हैं उनके चरण कमल, जो कि देवता लोग आज की हाथे शुद्धि करते हैं। तो आज और एक आचार्य श्री रघुनंदन दास ठाकुर का तिरुभावमूर्ति है, तो थोड़ा से उनके विषय में जानते हैं। अरे देवरगुरु, तो रघुनंदन दास ठाकुर जिसके बारे में वर्णन आता है चेतन चेतामित के, चेतन महाप्रभु के पार्षद शिवानंद सेन, उनके आत्मज जिनका नाम सिल कवि क्या कवि कर्णपुर गोस्वामी द्वारा एक ग्रंथ उन्होंने रचना किया है जिसका नाम है गौर गणेश देश दीपिका, जिसमें वो क्या करते हैं चेतन महाप्रभु के पार्षदों को वो कृष्ण लीला में क्या थे ये सारे चीजों को बताते हैं। चेतन महाप्रभु के जितने भी पार्षद है ना वो कृष्ण लीला में क्या थे ये सारे चीजों बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों में वर्णन करते हैं। बस छोटी सी पुस्तिका है गौर गणेश देश दीपिका, मैं कल उसको थोड़ा समय पढ़ा था, तो उसमें रघुनंदन दास ठाकुर के बारे में एक श्लोक में वर्णन करते हैं। वह वर्णन करते हुए वहां पे लिखते हैं कि व्यूहस्तृतीय प्रद्युम्न प्रिय नर्म सखो भवत चक्रे लीलाय सहायम यो राधा माधव वयो ब्रजे श्री चैतन्य अद्वैत तनु स एव रघुनंदना। रघुनंदन दास ठाकुर के बारे में इस श्लोक में वर्णन करते हैं वहां पे वो कि जो ये रघुनंदन दास ठाकुर है ये कृष्ण लीला में प्रिय नर्म सखो भवे भगवान के, ये जो भगवान कृष्ण कृष्ण लीला में ये भगवान के प्रिय सखा थे। कैसे प्रिय? प्रिय नर्म सखा, प्रिय नर्म सखो भव, प्रिय नर्म सखा थे। प्रिय नर्म सखा मतलब ऐसे सखा जो कि राधा माधव, यहाँ पे लिखा है राधा माधव बजे, राधा माधव को प्रसन्न करने के लिए, उनको हंसाने के लिए कुछ क्रियाकलाप की सेवा कर किया करते। उनका सेवा क्या था कि किस प्रकार से राधा माधव राधा कृष्ण हंसे, कितनी बड़ी सेवा है किसी को हंसाना, तो राधा कृष्ण कैसे हंसे, कैसे हंसते हुए लीला विहार को करे, इस प्रकार का कुछ न कुछ वो किया करते, इसलिए उसको प्रिय नर्म सखा। ये रघुनंदन दास ठाकुर प्रिय नर्म सखा थे भगवान के, जो कि भगवान को हमेशा हंसाया करते थे। और साथ साथ में द्वारका लीला में व्यूहस्तृतीय प्रद्युम्न, द्वारका लीला में क्या थे व्यूहस्त चतुर्व्यूह है ना, कौन कौन से, अनिरुद्ध वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न है ना, तो जो चतुर्व्यूह है उसमें जो तृतीय व्यूह है कौन है प्रद्युम्न। और व्यूहस तृतीय प्रद्युम्न, तृतीय व्यूहन कौन है? प्रद्युम्न, ये प्रद्युम्न थे। रघुनंदन दास ठाकुर कृष्ण लीला में कृष्ण के प्रिय नर्म सखा थे और द्वारका लीला में कौन थे? प्रद्युम्न थे। और साथ साथ में वर्णन है श्री चैतन्य अद्वैत, चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न थे, विचार करें चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न थे और चैतन्य महाप्रभु इनको बहुत प्रेम किया करते थे, पुत्र की भांति प्रेम करते थे चैतन्य महाप्रभु रघुनंदन दास को। हालांकि चैतन्य लीला में पिता और पुत्र का संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी पुत्र की तरह स्नेह करते थे। क्यों? क्योंकि द्वारका लीला में प्रद्युम्न कौन है? कृष्ण के पुत्र है। इस को ध्यान में रखते हुए चैतन्य महाप्रभु इनको पुत्रवत स्नेह करते थे रघुनंदन दास ठाकुर को। तो ये उनका रूप था जो चैतन्य लीला और में रघुनंदन दास ठाकुर और कृष्ण लीला में कृष्ण के प्रिय नर्म सखा और द्वारका लीला में प्रद्युम्न, इसका वर्णन इस श्लोक में कहा गया किया गया है। तो रघुनंदन दास ठाकुर मुकुंद वैद्य के पुत्र थे। दो मुकुंद है, एक मुकुंद दत्त और एक मुकुंद वैद्य। तो मुकुंद वैद्य के पुत्र रघुनंदन दास ठाकुर थे। ये मुकुंद दत्त भी भगवान के बहुत महान भक्त है। मुकुंद वैद्य भी भगवान के महान भक्त है। ये तीन भाई थे, मुकुंद वैद्य, नरहरि सरकार और माधव, ये तीन भाई थे। और विशेष करके रघुनंदन जो है ना, नरहरि सरकार ने रघुनंदन का पालन पोषण बहुत सुंदर तरीके से किया, क्योंकि उनके पिताजी थे कौन थे? डॉक्टर थे, वैद्य थे। और डॉक्टर को कभी भी किधर भी विजिट के लिए इमरजेंसी आ ही जाता था, वो किधर भी जाते ही रहते थे। इसलिए ज्यादा पालन पोषण कर गया उनके भाई, मुकुंद के भाई कौन? नरहरि सरकार ने रघुनंदन का पालन पोषण ज्यादा किया। मुकुंद वैद्य, एक बार की घटना है कि वह राजा हुसैन शाह के दरबार में उसको बुलाया गया, उससे इमरजेंसी हुआ, क्योंकि डॉक्टर लोगों को कभी रात को 12 बजे भी हुआ इमरजेंसी तो उसको जाना पड़ता है ना। तो कुछ तो राजा हुसैन शाह के दरबार में कुछ तो इमरजेंसी आया और उनको बुलाया गया और वहां पे वो गए। जिसका हालत बिगड़ी थी उसका ट्रीटमेंट भी किया और राजा का दर्शन, राजा के पास भी गए और राजा को उन्होंने देखा कि राजा सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है और उसके जो दास दासियां है उसको क्या कर रहे हैं? चामर और मोर पंख को डुला रहे हैं। तो चामर और मोर पंख, अभी वो राजा तो मुसलमान था, क्या उसका दर्शन करने के लिए जाए ऐसा, लेकिन फिर भी वहां पे जब गए तो उन्होंने क्या दर्शन किया? देखिए शुद्ध भक्त क्या दर्शन करता है। बंसीदास बावज महाराज ने ट्रेन के चक्कों को देखे रास मंडल का दर्शन किया। अभी यहाँ पे देखिए उस राजा का चामर और मोर पंख हो रहा है, इस मोर पंख और चामर को देखकर उनके भगवान कृष्ण की अनंत रास लीलाओं का स्मरण आने लगा और स्मरण आते आते अभी तो वो डॉक्टर किसी को ठीक करने आए तो खुद मूर्छित हो गए, वहां पे उन लीलाओं का स्मरण करते करते खुद मूर्छित हो गए। तो ऐसे मुकुंद वैद्य के घर पे रघुनंदन दास ठाकुर का जन्म हुआ और 5 वर्ष की अवस्था में ही एक घटना ऐसी घटी कि रघुनंदन 5 वर्ष के बालक थे और उनके पिता को कोई इमरजेंसी आया तो उस समय दोपहर का समय था और उनके पिता को कहीं बुलावा आया तो वो निकल पड़े। लेकिन निकलने से पहले, क्योंकि उनका जो घर का जो विग्रह कुल देवता थे वो कौन थे? गोपीनाथ जी, उनके कुल देवता थे, गोपीनाथ जी का विग्रह था उनके पास। तो दोपहर के समय इमरजेंसी आने के कारण वो दोपहर का राजभोग अर्पण गोपीनाथ जी को नहीं कर पा रहे थे और वो निकल रहे थे, उसी समय अपने पुत्र जो 5 साल का बालक रघुनंदन था उसको उन्होंने बोल कर गए कि गोपीनाथ को तुम ये भोग को लगा देना, खिला देना गोपीनाथ जी को। तो उस समय वो बालक ने सुन लिया और मुकुंद वैद्य निकल पड़े, चले गए और बालक ने पिता के आदेशानुसार उसने पूरा भोग की थाली को लिया और गोपीनाथ जी के सामने गया। गोपीनाथ जी के सामने जाकर बोला कि खाइए, मेरे पिताजी ने आपको खिलाने के लिए बोल के गया, आप कृपया भोग को खाइए। जाकर भोग लगाया और भोग लगा उधर बैठा रहा, 5 साल का बालक है, वो कभी तो भोग लगाया नहीं था और पिता ने बोला है करके खिलाना है और जिले जाकर बैठ के उधर खिलाया और बोला खाइए, बोला कि खाइए। कभी कुछ देर हो गया, गोपीनाथ जी खा ही नहीं रहे, बालक ने देखा, रघुनंदन ने देखा कि नहीं खा रहे, तो नहीं खा रहे तो सोचने लगा कि अपने आप को कोसने लगा कि मैं ऐसा पापी तापी हूं क्या, मेरे हाथ से नहीं खा रहे हो आप। पहले तो अपने आप को कोसने लगा, और दूसरा एक भय, पिताजी ने बोल के गया खिलाने के लिए, अगर नहीं खाया तो आके डांटेंगे मेरे को। दूसरा एक भय, क्योंकि बालक था, ये दो भय से दो विचार उनके माइंड में आ रहा था उस बालक के। पहली बात है कि आप भोग क्यों नहीं खा रहे, मेरे हाथ से नहीं खाएंगे आप। अरे मैं नहीं झूठा किया हूँ, मैं कुछ खाया नहीं उसमें से, आप खा लीजिए। एक तो एक बोल रहे थे, और दूसरी बात उनको भय सता रहा था कि अगर आप नहीं खाए तो मेरे पिताजी आके मेरे को डांटेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला था आपको खिला के जाने के लिए। अभी तो बहुत देर हो गया, गोपीनाथ जी खा नहीं रहे। सोचिए, हम जगन्नाथ जी को उधर भोग अर्पण किए राजभोग, और वहां से भोग खाली पेट प्लेट अगर बाहर आ गया तो उस दिन हंगामा न मच जाए कि कहां गया करके। तब तक तो उस जो पुजारी भोग लगाए उसके ऊपर शक है, अंदर भाई को वो तो नहीं खाया। बहुत सारे चीजें हो सकती है। तो वो बालक उधर बैठा हुआ है, बोला खाओ, खाने के लिए बार बार उनको ये कर रहा है, और इतना हट कर लिया कि आप जब तक खाएंगे नहीं तब तक मैं जाने वाला नहीं हूं, आप खाइए। और इतना हट कर लिया, और बाल हट तो फेमस है, बाल हट के आगे किसका क्या जलता है। और भगवान को खाना पड़ा, और पूरी प्लेट को भगवान खा गए, प्लेट पूरा खा ली, खुश हो गया, थैंक यू, धन्यवाद आपने खाया, चलो प्लेट को ले जाके किचन में रख दिया। अभी आए कौन, पिताजी आए, अभी इलाज करके आए, भूख लगा हुआ था, बोले कि महाप्रसाद लेकर आओ। तो रघुनंदन बोला कि महाप्रसाद, बोला मैंने तुमको भोग लगाने के लिए बोला था ना, नहीं लगाया क्या? नहीं लगाया ना, खिला दिया। बोले महाप्रसाद लेके आओ, तो महाप्रसाद कुछ बचा नहीं, खा लिया हो तो, मैंने तो खिला दिया है, मुझे क्या मालूम कि थोड़ा छोड़ना भी था। मैं तो पूरा खिला दिया। तो अभी मुकुंद वैद्य जो थे वो सोचने लगे, कुछ तो गड़बड़ है, एक ऐसा, क्योंकि भगवान तो दृष्टिपात करते हैं हर भक्त को, और महाप्रसाद को छोड़ते हैं भगवान, केवल अपने दृष्टि से खाते हैं, पाप को ग्रहण कर लेते हैं, उस महाप्रसाद को भक्त के लिए छोड़ देते हैं, कृपावश जगन्नाथ महाप्रसाद है, विरंची रसंभूर माने, शिव ब्रह्मा को भी दुर्लभ है ऐसा महाप्रसाद। तो भगवान कृपावश भक्तों के लिए महाप्रसाद को छोड़ते हैं, और मुकुंद ने मांगा कि महाप्रसाद को लाओ, लेकिन खा गए ऐसा बोला जब पुत्र ने, तभी देखिए एक दो चीजें उनके भी माइंड में चलने लगा, कुछ तो एक गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। और दूसरा क्या हुआ था कि बालक कभी झूठ नहीं बोल सकता है, तो ये भी था कि बालक खिला दिया होगा, झूठ नहीं बात, क्योंकि बालक क्यों झूठ बोलेगा, 5 साल की अवस्था का बालक क्यों झूठ बोलेगा, वो झूठ तो बालक नहीं बोल रहा है, या तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो उन्होंने उस बालक को डांटा नहीं, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, चलो खा गए ना भगवान, कोई बात नहीं, चलिए शाम को फिर से भोग बनाया, और फिर से रघुनंदन को दिया कि जाओ खिलाओ, अभी लड्डू बनाया था, अभी लड्डू बनाया और बोला कि जाके खिलाओ भगवान को, बोला कि हाँ खिलाता हूँ। तो उस समय रघुनंदन वो बालक जो है भगवान गोपीनाथ को फिर से भोग को खिलाने गए, और उस समय मुकुंद जिनको विश्वास नहीं हो रहा था, उन्होंने खिड़की से झांककर देख रहे थे कि क्या हो रहा है, देखते हैं, और बालक जाकर वहां पे अभी आपके लिए लड्डू लेकर आया हूँ, आप खाइए अभी। और भगवान गोपीनाथ ने उस लड्डू को उठाकर लेके खाने लगे, और तुरंत ही मुकुंद वैद्य देखकर बहुत आविभोर हो गए, आश्चर्य हो गए कि मेरा बालक के लिए देखिए भगवान ने कैसे है, मेरे बालक कितना मेरे से कितना महान है, मेरा बालक, मेरा पुत्र ये रघुनंदन मेरे से कितना महान है। और इस प्रकार से वो आज भी वो खाते लड्डू, शायद जी मैं तो कैशपुरी शायद गया नहीं हूँ, मुझको ध्यान नहीं है, ये ब्रज गौरमंडल में पड़ता है जगह, नहीं पड़ता है ये, इसके काटवा से नज़दीक है, काटवा के नज़दीक किधर है गोपीनाथ जी का दर्शन है, तो आज भी गोपीनाथ का वो विग्रह है, क्योंकि हम गौरमंडल परिक्रमा में पड़ता है। अच्छा, तो आज भी दर्शन है उस विग्रह का। तो इस प्रकार से उस बालक रघुनंदन को मुकुंद ने अपने गले से लगा लिया कि कितना महान है, मेरे से बढ़कर मेरा पुत्र है, मेरे से बढ़कर है। और इसी बात को एक बार स्मरण करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने, एक बार चैतन्य महाप्रभु आए और हास्यवश उन्होंने मुकुंद वैद्य को बोला, दोनों साथ में आ रहे थे, रघुनंदन दास ठाकुर भी आ रहे थे, मुकुंद वैद्य बाप बेटे दोनों साथ में आ रहे थे, और चेतन महाप्रभु ने देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, बाप कौन बेटा कौन, पुत्र कौन पिता कौन, पूछ दिया मुकुंद वैद्य को, पुत्र कौन पिता कौन। तो उस समय मुकुंद वैद्य ने बोला कि ये मेरा पिता है, क्यों, क्योंकि इससे मैंने सीखा मेरे से बढ़कर है गोपीनाथ जी ने इसके, मैं तो इतना दिनों से आवर कर रहा था कभी नहीं खाए, लेकिन इसने खिलाया और भगवान खा लिए। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर रघुनंदन दास ठाकुर जो कि आज जिनका तिरुभाव तिथि है, और इस प्रकार से वह चैतन्य महाप्रभु के गोपीनाथ जी के साथ उनका जो आदान प्रदान होता था, 8 वर्ष की आयु में उनके घर के पास एक पुष्करणी थी, उस पुष्करणी के पास बैठ कर वो, और वो पुष्करणी के पास एक कदम्ब का वृक्ष है, था अभी है कि नहीं वो पता नहीं मुझे, तब उस पुष्करणी के पास एक कदम्ब का वृक्ष था, उस कदम्ब वृक्ष के पास बैठ कर वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में खोए रहते थे, और विशेष करके गोपीनाथ जी ने जो उनके साथ आदान प्रदान किया उन लीलाओं का स्मरण करते हुए रघुनंदन दास ठाकुर बैठ कर वहाँ पे अपने भाव को वो व्यक्त करते थे, और उनके जो भाव को व्यक्त करना उन्होंने एक 8 श्लोकों की रचना की जिसको गौर भाव अमृत, ये 8 श्लोक है, उसमें चैतन्य महाप्रभु के लीला गुणगान करते हुए उन्होंने गौर भाव अमृत को लिखा। और उस समय जो कदम्ब वृक्ष था और उन्होंने इस प्रकार से भगवान की लीलाओं का गायन कीर्तन वहां पे करते थे, वो कदम्ब वृक्ष चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में से कोई एक पार्षद थे, वो प्रकट हो गए, वो कदम्ब वृक्ष प्रकट होकर रघुनंदन दास ठाकुर को बोले कि आज दो कदम्ब का फूल लेकर प्रकट हुए, और बोले कि आज से एक कदम्ब वृक्ष है, हर एक मौसम में तुमको 2 फूल प्रदान करेगा जिससे तुम गोपीनाथ जी की सेवा पूजा करना, और उनको 2 फूल डेली हर एक ऋतु में हर एक मौसम में वो कदम से 2 फूल देते थे, और इससे वो रघुनंदन दास ठाकुर लाकर उसको गोपीनाथ जी के चरणों में अर्पण करते थे। एक बार बहुत विशाल संकीर्तन निकाला उन्होंने, संकीर्तन का आयोजन किया, संकीर्तन में कई हजारों लोग भाग लिए, और उसमें अभिराम दास ठाकुर भी आए, अभिराम दास ठाकुर एक कृष्ण लीला में श्रीराम सखा, और वो भी आए, अखंड कीर्तन हुआ, अखंड कीर्तन प्रचंड तरीके से हुआ, और खूब डांस, ऐसा नृत्य हुआ कि न भूतो न भविष्यति, ऐसा नृत्य हुआ, अभिराम दास ठाकुर इतना नृत्य करते थे, अखंड प्रचंड तरीके से नृत्य कर रहे थे कि वो वर्णन है कि उनके उनके पैरों में जो नुकुर था ना वो 6 किलोमीटर दूर जाके गिरा निकल के, इतना कीर्तन उदंतता से कीर्तन कर रहे थे। तो उस समय ये बहुत बड़ी मंजिल, बहुत बड़ा पैमाने में बनगा संकीर्तन का आयोजन किए थे रघुनंदन दास ठाकुर। और एक समय की बात है कि अभिराम दास ठाकुर इनकी परीक्षा लेने के लिए आए। आपको मालूम है कि अभिराम दास ठाकुर जो है ना, एक्चुअली जो कोई भी भक्ति का ढोंग करता था या तो अपने आप को भगवान मानता था, जो कोई नास्तिकवाद था, अभिराम दास ठाकुर उसके पास जाकर उसको दंडवत मारता था तो मर जाता था। ढोंगी व्यक्ति जो ढोंग रचता था ना, अभिराम दास ठाकुर उनको जाके दंडवत मारते थे, और वो व्यक्ति तो उस समय इतना डर था लोगों के माइंड में कि अगर हम अपने आप को भगवान बोले, अगर कुछ ढोंग किया तो अभिराम दास ठाकुर वहां पहुंचते थे और जाके प्रणाम कर देते थे, और उसको मैसेज दे देते थे, बोलो अभिराम प्रणाम करने के लिए आ रहा है। तो अभिराम दास ठाकुर एक बार रघुनंदन की परीक्षा लेने के लिए आए, और सब लोग ऐसा माइंड में उथल पुथल हो रहा था, अभी आएंगे दंडवत मारेंगे, कुछ गड़बड़ होगा तो मेरा बेटा भैया, लेकिन रघुनंदन दास ठाकुर तो महान भक्त चैतन्य पार्षद और स्वयं चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न, अभी इस बार हमको ने सुना इस श्लोक से अभिन्न दे है, तो इसलिए उन्होंने आए और उनको प्रणाम भी किए, आलिंगन भी किए, और अखंड कीर्तन होने लगा, कुछ नहीं हुआ रघुनंदन दास ठाकुर को। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर इन दोनों आचार्यों का आज तिरुभाव तिथि है। आज के दिन पे हम इन आचार्यों से यही प्रार्थना की भिक्षा मांगना चाहिए कि जिस प्रकार से इनकी रति भगवान के चरण कमलों में, ऐसी रति जो है उसका एक बुद्ध एक अंश मात्र भी अगर हमको प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन भी सफल हो जाए। ऐसे ही आज इनके उनके तिरुभाव तिथि के दिन पे हम प्रार्थना करते हैं, श्री बंसीदास बाबूजी महाराज की, श्री रघुनंदन दास ठाकुर की। अभी एक और फेस्टिवल आज हो गया है, हरियाली तीज का फेस्टिवल जो कि कल था। एक्चुअली ये जो फेस्टिवल है ब्रज में बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला फेस्टिवल है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये फेस्टिवल सावन महीना प्रारंभ होता है, तो सावन महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया आज चतुर्थी है, ये कल गया फेस्टिवल, लेकिन कल से प्रारंभ हो गया, ये चलता है पूर्णिमा तक चलता है। तो इसको हरियाली तीज बोलते हैं। यहाँ ब्रजधाम वृंदावन में हरियाली तीज के नाम से फेस्टिवल जाना जाता है। और ये फेस्टिवल की विशेषता यह है कि देखिए सावन का महीना वैसे ही बहुत सुहाना होता है ना, सब जगह हरियाली हरियाली छा जाता है और मन भी हरा भरा हो जाता है, एकदम प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न प्रफुल्लित मुद्रा में हो जाता है ना। तो ऐसे समय में राधा और कृष्ण का जो मिलन का लीला है ये बहुत ज़्यादा होता है श्रावण महीने और भाद्र महीने। इसके बाद जो भाद्र महीना आएगा ये दोनों में, ये श्रावण और भाद्र ये दोनों में ये जो लीलाएँ हैं राधा कृष्ण के मिलन की लीला ये बहुत तीव्रता से होती है। तब ये हरियाली तीज जो ब्रज में जो फेमस हुआ है, वर्णन ऐसा आता है कि बरसाना धाम के जितने भी गोपियाँ थे या तो वहाँ के जितने भी गोपियाँ ही समझिए गोपियाँ थी, उन सबका जो विवाह हुआ था कहाँ पे, नंद भवन नंद गांव में हुआ था। तो वहाँ पे सारे गोपियाँ जो थे, सारे गोपियों का वहाँ पे जितने भी लड़कियाँ थे उनका विवाह कहाँ पे हुआ था, नंद गांव में हुआ था। तो आज के दिन पे जिन गोपियों का विवाह, जैसे नवे नवेली अभी पहली बार विवाहित होके वो नंद गांव में गई हुई है, अपने ससुराल में पहली बार गई हुई है, ससुराल में पहली बार गई हुई है, तो क्या होता है इस हरियाली तीज के दिन पे बरसाना से उन गोपियों के जो भाई होते थे, उन गोपियों के भाई आज के दिन पे हरियाली तीज के दिन पे आज के दिन पे अपने बहन को नंद गांव से लेकर कहाँ आते थे, बरसाना, आज के दिन पे लेने जाते थे, लेकर आते थे और लाकर बहुत सुंदर फेस्टिवल का आयोजन होता था। कौन सा फेस्टिवल, झूला का फेस्टिवल का आयोजन होता था, बहुत बड़ा फेस्टिवल, घर के सारे फैमिली मेंबर मिलकर और विशेष करके भाई और बहन का जो प्रेम है और दूसरों एक दूसरे को झूला झुलाना, और घर के सारे मेंबर बड़े से झूले पे बैठते थे और एक दूसरे को झूला झुलाते थे और बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाते थे। तो ऐसी एक लीला कि राधा रानी का भी विवाह नंदगांव में हुआ था। देखिए ब्रह्म वैद पुराण में ऐसे तो राधा रानी के विवाह का ज़्यादा वर्णन हुआ नहीं है, लेकिन ब्रह्म वैवत पुराण में राधा रानी के विवाह का पांच बार हुआ विवाह करके ऐसा वर्णन आता है ब्रह्म वैवत पुराण में। एक बार नंद भवन में हुआ और एक बार भांडीर वन में हुआ, ऐसे ही अलग अलग जगह में पांच बार इनके विवाह का वर्णन हुआ। किसके, राधा रानी के विवाह का वर्णन ब्रह्म वैवत पुराण में पांच बार आया हुआ है। तो एक बार की घटना है कि बहुत तेज आंधी तूफान बहुत तेज चला उस समय नंद महाराज ने अपने बछड़ों गायों गईयों सब घर का सब सामान इधर उधर हो रहा था, उसमें नंद महाराज उस सब में जुटे हुए थे और कृष्ण उसमें कृष्ण को लिए हुए थे, लेकिन देखा कि इतना तेज आधी तूफान आया तो उस समय उन्होंने क्या किया, राधा रानी उसमें आई हुई थी और उन्होंने राधा रानी को कृष्ण को सौंपा कि तुम इसको संभालो मैं दूसरा चीजों को संभालता हूँ, ऐसा करके उसमें लग गए। और उस समय वर्णन है ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि उस समय राधा रानी कृष्ण को लेकर किसी एक कुंज में चली गई और वहां पे उन्होंने तरुण 16 साल का रूप को धारण किए और वहां पे उनका विवाह संपन्न हुआ। और इस विवाह को संपन्न करने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी प्रकट होकर इस विवाह को संपन्न कराए हैं। तो राधा रानी का विवाह हुआ था, बरसाने से सारे भाई अपने बहनों को नंद गांव से लेकर कहां गए, बरसाना गए, लेकिन राधा रानी को लेने के लिए अभी तक उनका भाई जो श्रीराम था लेने के लिए अभी तक नहीं पहुंचा, राधा रानी को लेने के लिए अभी तक नहीं पहुंचा। तो सारे लोग सखियां चली गई नंद गांव से, सारे सखियां कहां चली गई, बरसाना चली गई, सबके भाई आए। एक्चुअली में भाई बहुत सुंदर तरीके से रथ को सजाते थे, रथ को सजाकर उस रथ से अपने बहनों को लेकर वो लेकर आते थे, अपने उनके मायके लेकर आते थे, ससुराल से मायके लेकर आते थे आज के दिन में। तो अभी सब लोग नंद गांव से कहाँ चले गए, बरसाना चले गए, सारी सखियां, अभी राधा रानी नंद भवन में अकेले पड़ गई। राधा रानी सोचने लगी कि क्या मेरे से प्रेम खत्म हो गया मेरे घर वालों का, सोचिए कितना बड़ा दुख लगा राधा रानी को, बहुत दुखी हो गई राधा रानी कि क्या श्रीराम का मेरे प्रति प्रेम ही नहीं, अभी तक सारे लोग चले गए लेकिन मेरा भाई अभी तक मुझे नहीं आया, ऐसा सोच के समझे राधा रानी बहुत दुखी होकर बैठ गई, बहुत दुखी हो गई। लेकिन श्रीराम स्पेशल तैयारी कर रहा था बरसाना में राधा रानी को लेने जाने के लिए, बहुत स्पेशल तैयारी कर रहा था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, लेकिन फिर भी लेट ही सही, लेकिन वह बहुत सुंदर तरीके से रथ को सुजित करके सोने का रथ रथ सोने से बढ़कर और रथ को सुसज्जित करा के बहुत सुंदर गार्लैंड से सजा कर इत्यादि कर वह श्री राम क्या श्रीमती राधा रानी को लेने के लिए गया। अंततः जब राधा रानी को यह पता चला कि श्री राम आ गया लेने के लिए, तो उस समय राधा रानी बहुत प्रफुल्लित हो गई, बहुत प्रसन्न हो गई और उन्होंने क्या किया, श्री राम के साथ बरसाना के लिए पहुंच गई। अभी बरसाना में पहुंची और सारे सखियां एक साथ मिलकर पूरा बरसाना में बहुत सुंदर फेस्टिवल का आयोजन हुआ, झूला झूलने का फेस्टिवल आज से प्रारंभ होता है ब्रज में, और एक फेस्टिवल बरसाना से प्रारंभ होता है, फिर वृंदावन में भी एक फेस्टिवल आज के दिन में मनाया जाता है। तो बहुत सुंदर फेस्टिवल होने लगा। राधा रानी अपने मायके बरसाना में पहुंच चुके, वहां पे जितने भी फैमिली मेंबर सारे लोग सखियां मिलकर बहुत सुंदर तरीके से इस झूला का आयोजन हुआ, और झूला का आयोजन चल रहा था। अभी इधर कृष्ण कहाँ, राधा रानी के बिना क्या, राधा रानी के बिना आधा और कहाँ राधा रानी के बिना रह सकते हैं। कृष्ण इतना प्रेम करते हैं राधे से कि अभी राधा रानी चली गई, अपने आप को रोक नहीं पाए। हालांकि गऊओं को चराने जाते थे, वर्णन आता है कि गऊओं को जब कृष्ण चराने जाते थे तो देखिए राधा रानी से कितना प्रेम करते थे, कितना उनसे मिलना चाहते थे, क्योंकि एक्चुअली भगवान कृष्ण का जो हृदय है वो वृंदावन धाम है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर राधा रानी विराजती है, राधा रानी है, इसलिए बहुत प्रेम करते हैं वृंदावन धाम को। वहाँ छोड़ के वृंदावन धाम को कभी भी भगवान छोड़ के नहीं जाते हैं। गोलोक धाम से जब वृंदावन यहाँ पे प्रकट हुए थे भगवान, तो अपने धाम को लेकर आए, गोलोक धाम को यहाँ पे लेकर आए, सबको प्रकट कराए उसके बाद, क्योंकि गोलोक धाम को कभी भी वृंदावन धाम को भगवान छोड़ते नहीं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे नित्य रूप से श्रीमती राधा रानी विराजती है। ऐसा वर्णन है कि जब भगवान कृष्ण गायों और ग्वाल ये बछड़ों को जब चराने के लिए निकलते थे, तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ चरण चिन्हों को देखा। हाँ, वर्णन आता है, प्रिया चरण अंकित धरण देखत जिमे जिमे काय, प्रिया चरण, जब प्रिया के चरणों को, चरण चिन्ह को, छाप को जब देखते थे इस गौचारण की लीला में, तो कृष्ण उसका आलिंगन करना चाहते थे, उन चरण कमलों का आलिंगन करना चाहते थे। लेकिन कैसे आलिंगन करें, तो क्या करते थे, ग्वाल सखाओ जितने भी उनके मित्र थे उनको क्या बोलते थे कि आप लोग को मालूम है इस ब्रज के रज में ना ब्रह्मा और शिव भी लोटन पोटन करते हैं, महिमा ब्रज की, रज की महिमा को गायन करते थे अपने मित्र सखाओं से, भगवान कृष्ण गायन करते उस ब्रज की महिमा को। एक्चुअली उनको लौटना है, लेकिन कैसे लौटे, क्योंकि लौटना इसलिए क्योंकि प्रिया जी का चरण कमल दिख गया, इसलिए उसका आलिंगन करना है, उसमें लौटना है। लेकिन अपने सखाओं को क्या बोलते हैं, इस ब्रज की धूल को ब्रह्मा और शिव भी प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ पे लोटन पोटन करना चाहते हैं, तो चलो आज हम इस धूल में लोटन पोटन करते हैं। प्रिया चरण रज देखत लुंठत लुंठत, तुरंत भगवान कृष्ण उस चरण को देखकर, हाँ सखाओं को तो इस प्रकार से पट्टी पढ़ा देते हैं, लेकिन उस चरण को अपने हृदय में लेकर उसको लुंठन करते हुए लोटते पोटते हो उस प्रिया जी का आलिंगन कर देते हैं। तो अभी प्रिया जी कहाँ पहुंच गई, बरसाने धाम में पहुंच गई, उनके भाई आकर लेकर गए इस हरियाली तीज के दिन पे लेके गए। अब कृष्ण को कहाँ रहा जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक प्लान बनाया। प्लान क्या बनाया कि गोपी वेश धारण करके कहाँ भी पहुंच गए, बरसाना में पहुंच गए, ससुराल में पहुंच गए। और वहां पे झूलन झूलन की लीला तो चल ही रहा था, और वहां पे जाके वो गोपी बन गए थे और लोगों के दृष्टि में नहीं आ रहे थे, गोपी बनकर श्रीमती राधा, अभी राधा रानी के पास जब भी पहुंचे तो राधा रानी को तुरंत समझ गए कि कौन है, तुरंत समझ गए श्रीमती राधा रानी, और तो श्रीमती राधा रानी के साथ वो झूलन फेस्टिवल का बहुत आनंद लेंगे। कभी कभी वो झूलन जो है ना इतना तीव्र गति से वो 360 डिग्री, हाँ इतना 360 डिग्री में चलता था, हाँ एकदम ऑलमोस्ट राउंड 360 डिग्री मतलब है ना, हाँ लिखा हुआ 360 तो ऐसा इतना तेज से झूला होता था, पूरा राउंड मार लेता था। और उस समय राधा रानी डर जाते थे और कृष्ण उनका उनको पकड़ के उनका आलिंगन कर देते। इस प्रकार की लीलाएं जो है आज इस हरियाली तीज के दिन पर बहुत सुंदर फेस्टिवल, हाँ ब्रजधाम वृंदावन में, बरसाना में, और यहाँ तक कि वृंदावन में भी पुष्कर को बहुत धूमधाम से कल मनाया गया। विशेष करके बांके बिहारी को बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है वृंदावन धाम में। अखिल वृंदावन धाम के हर एक मंदिर को आज भरा रूप दिया जाता है। वृंदावन के जितने पुजारी है, ब्रजवासी है, मंदिर है, भगवान है, झूला है, सब कुछ आज हरा भरा। हाँ, सारे ड्रेस भी हरा पहनते हैं। आज के दिन में अगर बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए जाएंगे तो बांके बिहारी का दर्शन पूरा महल को जो है ना हरा हरा भरा रूप दिया गया हुआ है। पूरे महल को पूरा हरियाली दिया गया हुआ है और भगवान को भी हरा ड्रेस पहनाया गया हुआ है। वहाँ का जो पर्दा है वो पर्दा भी हरा लगाया गया, जो पर्दा बार बार बंद होता है। तो बहुत सुंदर तरीके विशेष करके और झूला पे बैठाया जाता है उनको। आज वृंदावन के सारे विग्रह जो ना कभी कभी दर्शन करते ना बहुत अंदर रहते हैं, लेकिन आज वो बाहर निकल के झूला में बैठ के झूला झूलते हैं। कल से प्रारंभ किए हुए तो ये बहुत सुंदर पुष्कर विशेष करके बांके बिहारी में, और साथ साथ में हमने कल दर्शन किया इस्कॉन में भी, ये पुष्कर बहुत सुंदर तरीके से मनाया गया और आज हम भी दर्शन कर रहे हैं सुंदर तरीके से इस हरियाली तीज का। जगन्नाथ जी आदि इस हरे के रूप बीच में बैठकर हमको दर्शन दे रहे हैं। तो बांके बिहारी में विशेषता है, वृंदावन में बांके बिहारी में बहुत फेमस है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, सारे पुजारी लोग हरा वेश धारण करते हैं, हर एक चीज हरा होता है। और झूला जो है ना, ये विशेष झूला है एक्चुअली, जो आज के दिन पे बांके बिहारी में झूला निकलता है, बहुत विशेष झूला है। वर्णन है कि 85 किलो गोल्ड से बनाया हुआ ये झूला है। सोचिए 85 किलो गोल्ड से बनाया हुआ ये झूला है और ये साल में एक ही बार निकलता है हरियाली तीज के दिन पे। साल में एक बार निकलता है और उसको बहुत सुंदर तरीके से उसको सजाया जाता है और जिसपे कि बांके बिहारी को बैठा कर उनको झूला सुनाया जाता है। इस प्रकार से बहुत सुंदर फेस्टिवल होता है हरियाली तीज का। मन प्रसन्न हो जाता है और आज जैसे अंदर सजा हो जा रहा है तो कितना मन प्रफुल्लित था, और प्रफुल्लित था तो ये सब स्मरण आया लीलाओं का कि कितना सुंदर ब्रजधाम वृंदावन में सब लीला होता है फेस्टिवल। तो मैं समाप्त करेंगे। आज रघुनंदन दास ठाकुर का तिरुभाव तिथि, साथ साथ में बंसीदास भवन महाराज का तिरुभाव तिथि और साथ साथ में हरियाली तीज का फेस्टिवल। मेरे मति अनुसार मैंने थोड़ा से स्मरण करने का प्रयास किया। हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की वांछा कल्पतरुभ्यश्च वंदनानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय।